नमस्कार, ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और आधुनिक उपन्यास पर बात करने वाले हैं।
हाँ, इसका नाम है गुड मटेरियल,
जिसे 2023 में डॉली एल्डरटन ने लिखा है।
डॉली एल्डरटन को मिलेनियल पीढ़ी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवाज माना जाता है।
बिल्कुल, उनकी पहली किताब एवरीथिंग आई नो अबाउट लव ने तो काफी चर्चा बटोरी थी।
हाँ, दोस्ती और प्यार पर एक बहुत ही ताजा नजरिया था वो।
पर गुड मटेरियल में वो एक अलग ही हिम्मत का काम करती है ना।
बिल्कुल, एक महिला लेखिका होकर एक पुरुष के नजरिए से दिल टूटने की कहानी सुनाना,
और वो भी लंदन के स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में।
तो आज हम इसी दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि कैसे जिंदगी के सबसे दर्दनाक पल
आगे चलकर सबसे अच्छी कहानी या कहें तो गुड मटेरियल बन जाते हैं।
बिल्कुल, और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े झटके से। हमारा मुख्य पात्र है एंडी डॉसन,
35 साल का एक स्टैंड अप कॉमेडियन।
हाँ, तो उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, मतलब कम से कम उसे तो यही लगता है।
वो 4 साल से जेन के साथ रिलेशनशिप में है, दोनों साथ रहते हैं, और फिर एक दिन अचानक बिना किसी बड़ी लड़ाई या वार्निंग के जेन कहती है सब खत्म, और वो घर छोड़कर चली जाती है।
ये तो किसी के लिए भी एक सदमे जैसा होगा ना, मतलब सब कुछ सही चल रहा है और अचानक जमीन खिसक जाए।
वो पूरी तरह से बिखर जाता है। सच में उसके दिमाग में बस एक ही सवाल अटक जाता है, क्यों
क्यों?
उसे यकीन ही नहीं होता। वो सोचने लगता है कि शायद मैंने कोई मजाक किया जो उसे पसंद नहीं आया, या शायद मैंने घर साफ नहीं किया।
मतलब छोटी छोटी वजह ढूंढने लगता है।
हाँ, क्योंकि उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि 4 साल का रिश्ता
यूं ही खत्म हो सकता है।
बस, और यहीं से एंडी एक कॉमेडियन से जासूस बन जाता है।
जासूस, ये दिलचस्प है। मतलब वो अपने ही रिश्ते की जासूसी शुरू कर देता है। पुराने टेक्स्ट मैसेज को बार बार पढ़ना,
अच्छा,
जेन के सोशल मीडिया पर घंटों नजर रखना, दोस्तों से घुमा फिरा कर सवाल पूछना। उसकी पूरी दुनिया बस उस एक सवाल में सिमट जाती है कि गलती कहाँ हुई।
और यही हमें एंडी का असली चरित्र पता चलता है ना।
हाँ बिल्कुल, वो एक मैन चाइल्ड है, आकर्षक है, मजाकिया है,
पर अपने में ही डूबा हुआ है।
हाँ, और इमोशनली थोड़ा कच्चा है।
हाँ,
और सबसे बड़ी बात, इस पूरी कहानी में वो खुद को पीड़ित मानता है,
बेचारा मानता है।
बिल्कुल।
और यहीं पर कहानी थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि हम सब कुछ एंडी की आंखों से देख रहे हैं।
सही बात है।
और जब किसी का दिल टूटता है तो अपनी कहानी का हीरो तो बनना ही चाहेगा, विलन थोड़ी। तो एक कॉमेडियन के तौर पर वो अपने इस दर्द का क्या करता है, क्या वो इसे अपनी कला में इस्तेमाल कर पाता है?
असल में शुरुआत में तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है।
अच्छा,
उसका दर्द उसकी कला को निगल जाता है। यहीं से उसका बिखराव, जिसे हम स्पाइरल कहते हैं, वो शुरू होता है। उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है, एक अजनबी के घर में एक छोटे से कमरे में रहने लगता है।
और उसके स्टैंड अप शोज का क्या?
अरे वो तो बस दर्दनाक हो जाते हैं। वो स्टेज पर जोक सुनाने की जगह
थेरेपी सेशन चलाने लगता है।
बिल्कुल, वो ऐसे रोना धोना करता था कि ऑडियंस सोचती थी कि हंसने आए थे या
किसी का धोखा सुनने।
सही कहा, तो उसके शो बुरी तरह फ्लॉप होने लगते हैं। और अपने दर्द को समझने के लिए वो अपने दिमाग में एक कहानी बना लेता है।
एक कहानी? कैसी कहानी?
उसे लगता है कि जेन ने उसे जरूर किसी और के लिए छोड़ा होगा।
अच्छा, एक विलेन की जरूरत पड़ती है उसे।
हाँ, और वो कोई और है, जूलियन, जो उससे ज्यादा कामयाब कॉमेडियन है। ये कहानी एंडी को एक तरह का सुकून देती है।
हाँ, क्योंकि अगर कोई और विलेन मिल जाए तो खुद की गलतियों पर ध्यान नहीं देना पड़ता।
बिल्कुल,
ये तो बहुत ही मानवीय बात है, हम सब ऐसा करते हैं। तो हम एक ऐसे कथावाचक की कहानी सुन रहे हैं जिस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता।
एकदम सही कहा, हम एंडी के दिमाग में कैद हैं और वो हमें वही दिखा रहा है जो वो देखना चाहता है।
लेकिन सच ज्यादा देर छिपता नहीं है ना।
नहीं छिपता, धीरे धीरे उसकी बनाई कहानी में दरारें पड़ने लगती हैं।
वो कैसे?
जैसे जैसे समय बीतता है, दुख का वो पहला नशा उतरता है, तो उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसी जेन जब अपने करियर के बारे में कुछ बताती थी तो वो उसका मजाक उड़ा देता था, या कैसे छुट्टियों पर वो सिर्फ अपनी मर्जी चलाता था, या कितनी ही बार जेन कुछ कह रही होती थी और वो
सुन ही नहीं रहा होता था।
हाँ,
ये छोटी छोटी बातें हैं, ये चुभने लगती हैं बाद में।
हाँ, बहुत।
और उसके दोस्त, क्या वो हमेशा उसकी बेचारा वाली कहानी पर यकीन करते रहते हैं?
कब तक करते, खासकर उसका सबसे अच्छा दोस्त एवी।
अच्छा,
एक पॉइंट पे आकर वो एंडी से कहता है, भाई बस कर, अब कब तक जेन को विलेन बनाता रहेगा? कभी ये भी सोच कि शायद गलती तेरी भी हो।
यानी उसे सच्चाई का आईना दिखाया जाता है।
हाँ, और फिर एक रात उसका कॉमेडी शो बहुत ही बुरा जाता है, और उसी रात उसकी मुलाकात जूलियन से भी हो जाती है, जो बहुत अपमानजनक रहती है। उस रात एंडी का बनाया हुआ झूठ का महल
ढह जाता है
पूरी तरह से। उसे एहसास होता है कि वो पीड़ित नहीं है बल्कि अपनी इस हालत के लिए
वो खुद जिम्मेदार है।
बिल्कुल।
तो एंडी अब उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहां उसे मानना ही पड़ेगा कि प्रॉब्लम शायद उसमें है।
हाँ,
लेकिन अब तक तो हमने सिर्फ उसी की कहानी सुनी है। मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि जेन की तरफ से क्या हुआ होगा। क्या किताब हमें उसका साइड भी दिखाती है?
और यही ये उपन्यास एक ऐसा मोड़ लेता है जो इसे खास बना देता है।
अच्छा।
सैकड़ों पन्ने एंडी का दुखड़ा सुनने के बाद अचानक कहानी का नजरिया बदल जाता है।
मतलब
एक छोटा सा हिस्सा आता है जिसमें हम जेन की आवाज सुनते हैं।
वाह।
हमें पता चलता है कि जेन ने ये रिश्ता क्यों तोड़ा
और क्या वजह थी। क्या सच में जूलियन था?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो फिर
जेन बताती है कि ब्रेकअप किसी एक बड़ी घटना या धोखे की वजह से नहीं हुआ। असल में ये वो मामला था जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेथ बाय अ थाउजेंड कट्स।
मतलब कोई एक बड़ी वजह नहीं थी बल्कि हजारों छोटी छोटी बातें थी।
हाँ, जो धीरे धीरे रिश्ते को खत्म कर रही थी।
जैसे कि
जेन बताती है कि वो एंडी की माँ बन गई थी, उसकी मैनेजर, उसकी फाइनेंसर, सब कुछ।
ओ।
एंडी में आगे बढ़ने की कोई इच्छा ही नहीं थी। वो अपने कॉमेडी करियर को लेकर भी सीरियस नहीं था। घर के खर्चों की सारी जिम्मेदारी जेन पर थी।
तो उसे लगता था कि वो एक रिश्ते में होकर भी अकेली है।
बिल्कुल। वो एक ऐसी नाव को खींच रही थी जिसमें दूसरा इंसान चप्पू चलाने की जहमत ही नहीं कर रहा था। और फिर वो एक लाइन कहती है जो इस पूरे उपन्यास का सार है।
क्या?
वो कहती है, मुझे एक साथी चाहिए था पर मेरे पास एक दर्शक था।
आई नीडेड अ पार्टनर बट आई हैड एन ऑडियंस।
हाँ,
वाह, ये लाइन तो छुपने वाली है
ना।
मुझे एक साथी चाहिए था पर मेरे पास एक दर्शक था। मतलब आप किसी के साथ तो हैं पर असल में बिल्कुल अकेले हैं। आपका पार्टनर आपकी जिंदगी में हिस्सा नहीं ले रहा, बस किनारे बैठकर देख रहा है।
हाँ,
ये एक लाइन एंडी की पूरी कहानी को पलट देती है।
बिल्कुल। हमें एहसास होता है कि एंडी जिसे एक परफेक्ट रिश्ता समझ रहा था, वो असल में जेन के लिए कितना थका देने वाला और अकेला था।
डॉली एल्डरटन का ये लिखने का तरीका कमाल का है।
हाँ, वो दिखाती हैं कि एक ही रिश्ते के दो सच हो सकते हैं और दोनों अपनी अपनी जगह सही लग सकते हैं।
तो जब हम मतलब पाठक इस सच्चाई को जानते हैं तो एंडी का क्या होता है?
ये सच्चाई एंडी को पूरी तरह तोड़ देती है, लेकिन इस बार ये टूटना जरूरी था।
कि कोई विलन नहीं था।
कोई विलन नहीं था, बस दो लोग थे जो एक रिश्ते को अलग अलग नजरिए से देख रहे थे।
तो क्या वो जेन से दोबारा बात करता है?
हाँ, वो जेन से आखिरी बार मिलता है, लेकिन इस बार उसे वापस पाने के लिए नहीं। वो उससे मिलता है और पहली बार बिना किसी बहाने के अपनी गलतियों के लिए ईमानदारी से माफी मांगता है।
वो स्वीकार करता है कि वो एक अच्छा साथी नहीं था।
हाँ, और ये बातचीत बहुत ही शांत और परिपक्व है। यहीं पर एंडी का असली विकास होता है।
और उसकी कॉमेडी का क्या हुआ?
उपन्यास का अंत बहुत ही उम्मीद भरा है। एंडी वापस स्टेज पर है।
अच्छा?
लेकिन इस बार वो अपने टूटे दिल का रोना नहीं रो रहा।
तो फिर
इस बार उसकी कॉमेडी आत्म जागरूकता से भरी है। वो अपनी कमियों पर, अपनी नादानियों पर, अपने अंधेपन पर हंस रहा है।
और क्योंकि अब वो ईमानदार है
इसलिए वो सच में मजेदार है। उसका दर्द अब कच्चा घाव नहीं बल्कि एक कहानी बन चुका है।
उसने अपने बुरे अनुभव को सच में गुड मटेरियल में बदल दिया है।
बिल्कुल।
तो मतलब एंडी ने खुद को बचा लिया, रिश्ते को नहीं।
हाँ,
और मुझे लगता है कि ये कहानी सिर्फ एक ब्रेकअप से कहीं आगे की बात करती है ना।
हाँ, बिल्कुल।
ये आधुनिक रिश्तों और खासकर पुरुषों की भावनात्मक समझ पर भी एक टिप्पणी है।
सही कहा। एंडी कोई बुरा इंसान नहीं है। वो उन हजारों अच्छे लड़कों में से है जो सोचते हैं कि वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड है क्योंकि वो धोखा नहीं देते या चिल्लाते नहीं है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि एक सच्चा साथी होने का मतलब सिर्फ बुरी चीजें न करने से कहीं ज्यादा है।
इसका मतलब है जिम्मेदारी साझा करना, दूसरे के सपनों को समझना,
और सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि साथी बनना।
और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हम सब अपनी जिंदगी के कथावाचक हैं।
हम
और कभी कभी हम खुद को बचाने के लिए जो कहानी गढ़ते हैं वो सच्चाई से बहुत दूर होती है।
हाँ, एंडी की यात्रा अपनी गढ़ी हुई कहानी से निकलकर सच्चाई का सामना करने तक की यात्रा है।
दिखावे से प्रामाणिकता की ओर।
बिल्कुल। पहले वो एक कॉमेडियन होने का, एक अच्छे बॉयफ्रेंड होने का अभिनय कर रहा था। अंत में जब वो अभिनय छोड़कर बस एक ईमानदार इंसान बनता है
तभी उसकी कला और उसका जीवन दोनों सुधरते हैं।
तो ये उपन्यास हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन और खासकर अपने दिल टूटने के बारे में जो कहानियां खुद को सुनाते हैं वे शायद पूरी सच्चाई न हो।
और सच्चा विकास किसी और पर दोष मढ़ने से नहीं बल्कि उस कहानी में अपनी भूमिका देखने के साहस से आता है।
ये स्वीकार करने से आता है कि शायद उस कहानी में हम नायक नहीं बल्कि अपनी ही मुश्किलों के कारण थे।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रित फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।